कि राधा दामोदर मंदिर में 452 बैठकों के उपलक्ष्य में उत्सव का अनुष्ठान चल रहा है, उसी उपलक्ष्य में राधा दामोदर चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से सबसे पहले चैतन्य सप्ताह जो प्रारंभ हुआ वो राधा दामोदर मंदिर में हो रहा है। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बिना साधु गुरु दर्शन की कृपा के इन लीलाओं का आनंद नहीं लिया जा सकता है, उसी तरीके से चैतन्य सप्ताह के अंतर्गत आज दंड उत्सव का कथा आपको हमारे स्वामी त्रिजंजी महाराज श्री नारायण महाराज जी के द्वारा आपको श्रवण करेंगे।
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। हा देविका को भरगदगदयाद्यवाच जाचे निपत्त भुवि दंडवत उद्भटारति अस्य प्रसादम बुद्धस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके तव गणी गणनं विधि। अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जड्डं जागुदरोचि सांविदधतं पट्टम्बरस्य वृंदारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कंद निवेशितो जलभुजं ध्यायें दामोदरं। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि श्री श्री राधा दामोदर श्री मंदिर में महाप्रभु जी की सप्ताहव्यापी कथाओं का सत्र बैठा है। ये हम लोग को पहले जानना चाहिए कि ये स्थान वृंदावन में एक श्रेष्ठतम स्थानों में से एक है। यहीं पर श्री रूप गोस्वामी जी अपनी वैष्णव संसद के साथ में यहाँ पर विराजमान थे। श्री सनातन गोस्वामी पाद गोपाल भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ भट्ट जी गोस्वामी इत्यादि सभी उस संसद में आते थे। ये सेवा कुंज का एक विशेष स्थान है। बंसी भट्ट में रास के समय में कृष्ण अंतर ध्यान होने के बाद में राधा जी को साथ लिए हुए श्रृंगार भट्ट में उनका श्रृंगार किया और उनका मान प्रसादन किया। मान प्रसादन करने के बाद में श्रीमती राधिका जी विचार कर रही हैं, ओ मैंने अन्याय किया अकेले आकर, जिन हमारी सखियों ने ललिता विशाखा इत्यादि सखियों ने हमें सब कुछ छोड़ करके हमारे अनुगत्य में रहती हैं और उनको मैं छोड़कर के अकेले कृष्ण के पास में हूँ, इसलिए अब कृष्ण के साथ अकेले नहीं रहूँगी, गोपियों को आने दो, गोपियों के साथ में मैं रहूँगा। गोपियाँ निकट आ गईं, कृष्ण ने देखा जी वो तो गोपियाँ आई, बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, कैसे जल्दी चलिए। उन्होंने कहा जब मैं नहीं चल सकती, आपको जहाँ ले चलना हो वहाँ ले चलिए, किंतु अब मैं नहीं चल सकती। वो गोपियों के लिए प्रतीक्षा कर रही थी, इतने में गोपियाँ जब निकट आ गईं, उन्होंने कहा जी हमारे कंधे पर बैठ जाइए, कंधे पर बैठ, इतने प्रेम में अधीर थी, देह की शुद्ध बुद्धि नहीं थी कि कृष्ण पास ही बगल में खड़े हो गए और उनको नहीं देख सकी, प्रेम वैशित्य वहाँ पर हुआ। वे सब स्थान यह है, यहीं से कृष्ण के अंतर ध्यान होने पर यहीं पर बिलख बिलख करके रोने लगी। फिर सेवा कुंज में उन लोगों की भेंट हुई सब गोपियों से, सब गोपियाँ मिल करके जयतिति अधिकम इत्यादि राजपंच अध्यायी के प्राण अध्याय का पाठ करने लगी। कृष्ण फिर उनसे मिले, चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर आए, पासी में यमुना बह रही थी, कहाँ बैठे महाप्रभु जी, अक्रूर में रात के समय अक्रूर घाट में चले जाते और दिन में यहीं पास में यहाँ पासी में इमली तला इत्यादि, इमली तला तक कहा गया किंतु इमली तला के पास में ये सब क्षेत्र में महाप्रभु जी आए। महाप्रभु जी के एक तो कृष्ण का पदांकित और राधा जी का पतांग भूमि रासलीला और सेवा कुंज इत्यादि, और दूसरी बात यहाँ पर महाप्रभु जी के चरण अध्यूषित ये जोग पीठ के समान है, इसलिए रूप गोस्वामी ने यहीं रह करके भजन करना है। और यहीं पर रह करके उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल लीनमणि ललित माधव विदग्ध माधव अलंकार कौस्तुभ इत्यादि जितने भी ग्रंथ उनके हैं यहाँ से सूत्रपात किया, यहीं पर पूर्ण किया, बीच बीच में वो चले जाते थे जगन्नाथ क्षेत्र में। इसलिए वैष्णव के लिए यह परम पवित्र ये धाम कृष्ण लीला की दृष्टि से भी और महाप्रभु जी की लीला दृष्टि दोनों से ही। इसमें जीव गोस्वामी को अपने हाथ से अंकित करके रूप गोस्वामी ने श्री राधा दामोदर जी की श्री मूर्ति बनाई, और वही जीव गोस्वामी को उन्होंने सेवा पूजा आराधना करने का ये भाग दिया। इसके बाद में फिर वैष्णव की बिहार भूमि और कथा सत्र का ये प्रधान स्थान ये था। आज भी हम समझते हैं कि यह स्थान रूप गोस्वामी का ये सर्वोत्तम स्थान है, हमारे पूज्य ये गोस्वामी उनके लड़के लोग योग्य यथाजोग्य इसका देख रेख और सेवा पूजा आराधना कर रहे हैं, हम लोगों के लिए गौरव का चीज़ है। वस्तु है कि आज श्रीमन महाप्रभु जी के कथा सत्र में मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ, हमको कुछ कहने का कुछ सेवा करने का सुयोग गोस्वामी जी ने दिया, इसलिए मैं इनका आभारी हूँ। कथा आज है, आज कथा का विषय दंड लीला चूड़ा क्या दंड महोत्सव आज का विषय है, किंतु मैं समझता हूँ कि इस दंड महोत्सव को यदि हृदयंगम करना है, समझना अच्छी तरह से, तो इसकी भूमिका पर विचार करना पड़ेगा। दंड महोत्सव ये क्या चीज़ है ये समझ में नहीं, ये चिड़ा केला संदेश और ये सब एक में मिला करके नित्यानंद प्रभु जी ने विराट उत्सव किया और उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिया, ऊपर से देखने से इसकी कोई भी विचित्रता नहीं मालूम होती, किंतु भीतर में रस भरा पड़ा है। इसको समझने के लिए चैतन्य चैतामित चतुर्थ आदि चतुर्थ में प्रवेश करना पड़ेगा, उसको समझने के लिए राय रामानंद और महाप्रभु जी का संवाद समझना पड़ेगा, इसको समझने के लिए सनातन गोस्वामी की शिक्षा के भीतर में प्रवेश करना पड़ेगा, रूप गोस्वामी की शिक्षा में प्रवेश करना पड़ेगा, और अंत में डुबकी लगानी पड़ेगी शिक्षाष्टक के अंदर में, ऊपर से ये सब नीरस मालूम पड़ता है शिक्षास्त्र, किंतु इसमें सारा चैतन्य चैतामित वर्णन करने के बाद में ये शिक्षास्त्र जो 8 श्लोक दिए, इसमें गागर में सागर की भांति सब चैतन्य चैतामृत का समस्त विषय। और ये चैतन्य चैतामृत का विषय क्या है, इसको समझने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी के पास में चलना पड़ेगा। और रघुनाथ दास गोस्वामी क्या हैं, स्वरूप दामोदर जी ने अपने हृदय का सारा प्रेम उनके कंठ में रक्षित किया था, रखा था। और उधर रूप गोस्वामी का संग हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी को, उधर महाप्रभु का संग हुआ, और तब राधा कुंड में भजन कर रहे हैं। इतना सा मट्ठा केवल लेकर के जीवन धारण करके, वही रघुनाथ दास गोस्वामी जिनका आज दंड महोत्सव है। और उन्होंने हमारे कृष्ण दास कविराज गोस्वामी को वो सारे कड़चे अपने हृदय की अनुभूति कंठ में रखे हुए श्लोकों को सबको इनको दिया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को। कृष्णदास कविराज गोस्वामी करें जी, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं तो शून्य, किंतु इन्होंने हमारे हृदय में जो कुछ दिया मैं उसको चैतन्य चैतामृत में रख रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत को समझने के लिए फिर भक्ति रसामृत सिंधु उज्जलिनी इत्यादि ग्रंथों को जानना आवश्यक है, नहीं तो वो भी समझ में नहीं आएगा। फिर चैतन्य चरितामृत में ये जो राय रामानंद का संवाद है अद्भुत है, इसके बिना महाप्रभु जी की लीला कथा अधूरी रह जाएगी। और केवल दान लीला समझ में नहीं, दान महोत्सव समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं यहीं से थोड़ा सा समय, शायद आध घंटा पौन घंटा है, उसमें मैं चेष्टा करूंगा आज एक विहंगम दृष्टि इस पर डालूं। इसमें अधिकांश तो अंग्रेजी जानने वाले पाश्चात्य देश वाले हैं, ये तो कुछ समझेंगे नहीं। तभी मैं नवदीप दास जी से कहूंगा कि जो मैं कह रहा हूं उसका भाव लिख लेंगे, और पीछे जब कभी समय होगा यहाँ या मथुरा या और जगहों में तो उसको थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो हम चैतन्य चैतामृत में देखते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जी हैं कौन, ये स्वयं कृष्ण हैं। अंतः कृष्ण बहिर्गौर, नीचे भीतर में वो कृष्ण हैं और बाहर में गौरांग दिखाई पड़ रहे हैं सचिनंदन गौर हरि के रूप में। ये अपने सारे परिकरों को पुरुष रूप में, किसी किसी को स्त्री रूप में, महिला भक्त के रूप में, किंतु अधिकांश जितने प्रधान प्रधान हैं, ललिता विशाखा इत्यादि जितने लोग हैं, रूप मंजरी इत्यादि, ये सबको पुरुष रूप में लेकर के आए और राधा जी का भाव लेकर के आए। किस लिए आए, कृष्ण परम करुण है, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, प्रेम भक्ति निर्जास, प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, आ राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। प्रेम भक्ति प्रेम रस निर्जास, महाप्रभु के पहले यह भक्ति वैदिक भक्ति के रूप में मर्यादामयी भक्ति थी। भीष्म नारद इत्यादि जितने भी भक्त थे पहले, ध्रुव प्रहलाद इत्यादि को जो देखते हैं, जितने भी ब्रह्मा इत्यादि को देखते हैं, और इसके पहले जितने जितने भी भक्त हो गए हैं, वो सब मर्यादा मार्ग से, भक्ति मार्ग से, भगवान की भगवत्ता कहते थे ऐश्वर्य पर निर्भर है, ऐश्वर्य जितना ही भगवान को होगा उतना ही भगवान की सीमा है। इसलिए नारायण ही उस समय में भगवत्ता की सीमा के रूप में दिखे जाते थे। जितने भी मंत्र भागवत में कृष्ण लीला के पहले दिए गए हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव इत्यादि जितने भी हैं, ध्रुव को जो नारद जी ने मंत्र दिया है, प्रहलाद जी का मंत्र है, और सब जितने हैं, सब में श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरण, जितने भी देखे जाते हैं महाप्रभु जी से आने से पहले, ये सब लोगों की मर्यादामयी, ऐश्वर्यमयी या वैधि भक्ति। महाप्रभु जी के आने पर वो भक्ति रस हुआ, और यहां कहते हैं भक्ति रस निर्जास करित आस्वादन। भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति रस किसको कहते हैं, और भक्ति रस का निर्जास किसको कहते हैं, भक्ति रस में से क्या चीज देने के लिए आए और क्या चीज आस्वादन करने के लिए आए, ये सब चीज समझना पड़ेगा। भक्ति रसामी सिंधु में हमारे रूप गोस्वामी ने सबसे पहले श्लोक जो लिखा महाप्रभु जी के अनुगत्य में उनकी प्रेरणा से, वो लिखा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। आरंभ किया श्रद्धा से, ये श्रद्धा से लेकर महाभाव, उसके ऊपर रूढ़ अधिरूढ़ भाव तक सबकी इसमें व्याप्ति है, सबकी इसमें व्याप्ति है। इसमें कनिष्ठ मध्यम उत्तम उत्तमोत्तम जितने भी भक्ति के विचार हैं महाभाव तक सबकी इसमें व्याप्ति है। रूप गोस्वामी ने वो लिखा आदौ श्रद्धा तथा साधु संग ततो भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ भाव अधिरूढ़ भाव मादन मोदन एकदम सीमा तक लेकर के चले गए। ये सब के लक्षण इस अन्याभिलाषिता शून्यम में है। कहाँ पर है ये, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम इसके अंदर में है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आए एक श्लोक पर, माधुर्य कादंबी नामक समस्त पुस्तक को लिखा है एक श्लोक पर आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। इसको बिना समझे हुए भक्ति रसामृत सिंधु में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ऐसा ये घन विषय है। तो इन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसका वर्णन किया। तो महाप्रभु जी किस चीज के लिए आए, कृष्ण लीला के समाप्त होने के बाद में उन्होंने विचार किया, क्यों विचार किया, परम करुण और रसिक शेखर हैं, यही दुई हेतु इच्छा और उद्गम, उनके इच्छा उत्पन्न हुई। क्या भक्ति रस निर्जास करित आस्वादन, ओ कृष्ण लीला में मैं भक्ति रस का निर्जास आस्वादन नहीं कर सका, कर सका कुछ शांत दास सख्य वात्सल्य जिसमें कि शांत ब्रज में जरा गुप्त रूप से है, वो प्रकटित नहीं, दास सख्य वात्सल्य मधुर रसों रसों का आस्वादन मैंने किया, किंतु मैंने राधा जी के भाव की गंभीरता का था नहीं लगा सका। समुद्र में इतना पानी है, कौन सा भक्ति रसामृत सिंधु इतनी गहरी है, कितना पानी है, पैफिसक ओशन में जैसे हिमालय डूब जाएगा, ऐसे कृष्ण थाह लगाते हुए उसमें डूब गए, थाह वो नहीं लगा सके। राधा जी की प्रणय महिमा कैसी है नहीं समझ सके, ये विचार कर रहे हैं रसिक शेखर हैं, रसिक शेखर होने से उनको लोभ हुआ, राधा जी का भाव कितना गंभीर है, कितना गंभीर है। उन्होंने पारे एक बांस लगाया, जब बांस डूब गया था नहीं लगा, फिर लंबी सी रस्सी उसमें दी पत्थर बांधकर, देखा जी रस्सी जितनी लंबी है मीलों, था नहीं मिला था ही नहीं मिला। राधिका का प्रणय कृष्ण के प्रति कैसा है, ये प्रणय कैसा,
वो तो भाव तक तो छोड़ दिए, प्रेम स्नेह मान प्रणय, इसमें भी प्रणय कितने प्रकार का, सौख्य प्रणय और मैत्री प्रणय इत्यादि, इसका वर्णन बहुत विशाल है, मैं थोड़े समय में अभी नहीं वर्णन कर सकता, तभी आप लोग थोड़ा सा सुन करके रखिए। यही प्रणय प्रगाढ़ होने पर राग अनुराग प्रतिक्षण नवीन रूप में बढ़ता है। कभी पुराना ने कृष्ण को देखा, ये कृष्ण कौन आ रहे हैं, ललिता जी यही तो तुम्हारे उन्हीं की गोद से तो निकल करके आ रही, भूल गई तू, निर्वेद शिक्षा तुमको मिला, कृष्ण ने निर्वेद की शिक्षा दे दी, इसलिए तुमको इस चीज का पता नहीं। यह अनुराग जब बढ़ करके अपनी सीमा में आता है, स्वसंवेद्य दशा और जावदाश्रय वृत्ति को, अभी इसको समझाना भी बहुत कठिन बात है, किसको कहते हैं जावदाश्रय वृत्ति और किसको कहते हैं स्वसंवेद्य दशा, जिसमें कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, राधा जी कौन मैं हूँ और कृष्ण कौन है, दोनों भूल जाते हैं, बस प्रेम के आस्वादन में ऐसे मतवाद्य, बस प्रेम ही केवल रहता है, यही प्रेम प्रयोजन सनातन गोस्वामी को महाप्रभु जी ने शिक्षा दी। संबंध दामोदर राधा मदन मदन मोहन अभिधेय भक्ति और उसके प्रतिपाद्य वस्तु हैं गोविंद जी और गोपीनाथ जी, ये प्रयोजन के हैं, जिसमें गोपियों की चरणों की को पलोटते हैं, अपने कभी सिर पर रखते हैं, कभी यहाँ पर वस्त्राक्षल पर रखते हैं, कभी स्तव स्तुति करती हैं, इस तरह से ये प्रेम प्रयोजन है। वह आज कह रहे हैं कि राधा जी का प्रणय इतना गंभीर है, स्वसंवेद्य दशा, दोनों को भूल जाते हैं, पहले ही लंग हाँ ये सब में उसमें वर्णन किया है हमारे राय रामानंद जी ने, उसी स्वसंवेद्य दशा को, अर्थात तो प्रेम ही उस समय केवल है, इसी की अनुभूति और कुछ नहीं, प्रेम का में जो आनंद है, और उसमें प्रेम की परम पराकाष्ठा में विषय कृष्ण है, कौन कृष्ण, वही कामदेव के जो अभीष्ट मंत्र के उपास्य वस्तु वो है, और राधा जी हैं आश्रय की अंतिम सीमा, इन्हीं दोनों की संवेद्य दशा में जो प्रेम है उस प्रेम को आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए इच्छा उद्गम हुआ, क्योंकि रसिक शेखर है और परम करुण, इसको स्वयं तो आस्वादन करेंगे किंतु जगत इसे वंचित रह जाएगा, इसलिए आस्वादन करते समय उसके कुछ फुहेरे, कुछ छोटी छोटी बूंदें एक जमीन पर गिर करके फिर वहां से जो उड़ी तो जीव के हृदय में जरी थोड़ा सा कहीं लग गया, वही राग मार्ग भक्ति करिते प्रचारण, जो आस्वादन कर रहे हैं वो देने की वस्तु नहीं है, वह उन्नत उज्जवल और अपनी सीमा में श्रेष्ठ अवस्था तक है, वो तीन चीजें हैं राधाया प्रणय महिमा की दृशो अन्वयवा आस्वादो जैनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यंचास्य मद अनुभवतः कीदृशो वित्तिलो भात तद्भावाढ्य समजनी सची गर्भ सिंधो हरेन्दो। तो ये परम करुण होने के नाते उसके छींटे कुछ पड़ जाएं, इसलिए तीन अपनी वंछाओं को पूर्ण करने के लिए, आस्वादन करने के लिए वही कृष्ण ऊपर से गौरांग सची नंदन गौर हरि होकर के आए। ये तीन वंछाएं क्या हैं, जो कृष्ण लीला में आस्वादन इसको नहीं कर सके, वो भाव है राधा जी जो प्रणय की मूर्ति है, हमारे प्रणय की मूर्ति, कैसी राधा कृष्ण प्रणय विकृति, प्रणय की विकृति कौन है, ह्लादिनी शक्ति रूपी राधिका जी, जो कृष्ण से अभिन्न होते हुए भी भिन्न है विलास के लिए, ये इनका हमारे प्रति जो प्रेम है, प्रणय है, जिसके द्वारा कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं, वह प्रणय कैसा है, क्यों कहा, उन्होंने कहा ये जो प्रेम है, कृष्ण सोच रहे हैं ये प्रेम मेरा गुरु है और यह प्रेम जिसमें है वो मेरा गुरु हुआ, हुआ ना? यह प्रेम कृष्ण का गुरु है कौन? कस्मात वृंदे, वृंदे तू कहां से आ रही? मैं कुंड के तीर से आ रही हूं। वहां पर कहां से आ रही है? तो कृष्ण के चरण के मूल से आ रही। तो कृष्ण वहां क्या कर रहे हैं? कुंड के तीर पे हैं। क्या कर रहे हैं? नित्य शिक्षा कर रहे हैं। किसे नित्य की शिक्षा कर रहे हैं? तुमसे। मैं तो यहां हूं, हमसे कैसे? तो तुम्हारी मूर्ति जो उनको हृदय में स्फूर्ति होती है प्रत्येक लता तरु गुल्म इत्यादि से, उन्हीं को देख करके स्फूर्ति से ही वो नित्य शिक्षा कर रहे। तो उन्होंने चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया कृष्ण सर्वसर्वेश्वर है, रसिक शेखर है, किंतु आज वो श्रीमती राधिका को ही अपना प्रेम गुरु मान रहे हैं। एक ही जगह नहीं, कितनी जगह इसका वर्णन किया गया। वो चाहते हैं, देखते हैं कि उनका जो हमारे प्रति जो प्रणय है वो किस कोटि का है। कृष्ण ने थाह लगाना आरंभ किया, उनको थाह नहीं लगा, खुद उसमें डूब गए। दूसरी बात, कृष्ण की चार प्रकार की विशेष माधुर्या है जो नारायण इत्यादि में कहीं नहीं है, राम में भी नहीं है, यहां तक कि द्वारकाधीश में नहीं है, मथुरेश कृष्ण में भी नहीं है। विशेष करके ब्रज में तो है, किंतु ब्रज में भी इसकी उपलब्धि चार माधुर्यों की सखाओं को भी नहीं है उतनी, है कुछ कुछ। जसोदानंद जी को भी है किंतु कुछ कुछ, उनसे भी कुछ अधिक है किंतु अभी पूरी नहीं। गोपियों में पूरी है ने? ललिता विशाखा में पूर्णतर है किंतु पूर्णतम कहाँ उसकी स्थिति है? श्रीमती राधिका जी में पूर्ण स्थिति है। इन चारों प्रकार की माधुरियों का, रूप माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, जो और किसी भी में नहीं है, और इसमें सर्वाधिक श्रीमती राधिका जी पूर्ण रूप से उसका आस्वादन करती हैं। ये राधा जी कैसे आस्वादन करती हैं? इसी के लिए बतलाया, अखनतांग फलमिदम न परम विदाम सख्या पशुन अनुविवेश यतोर वयस्य वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुवेनुष्टम अने आराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वर न पारे हम निर्बद्ध संजुजां आशामहो चरण रेणिजुषाम हम श्याम वृंदावने किमप गुल्म लतौषधीनां जा दुस्तजं स्वजन आर्ज पथं च हित्वा भेजे मुकुंद पदवीं सुतबीं। श्रुतियां जिसको आज तक खोजते भी अभी नहीं पा सकी, उस पर ब्रह्म को, उस रसि शेखर को गोपियां, कुछ गोपियां तो इतने से छाछ पर उनको नचाती हैं और कुछ गोपियां जो हैं कैसी हैं, बंसी करण निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टं च पीत वसनम ब्रजराज सूनो जस्या कटाक्ष सर्घातम मूर्छितेन तंग राधिका पर चिरामि कदारसेन। जिनके कटाक्ष से हाथ से बंसी फिसल करके गिर जाती है, मयूर मुकुट शिखंड शेखर एकदम गिर जाता है। किस लिए गिर जाता है? गिरेगा क्यों? कृष्ण जब तक नहीं गिरेंगे तब मोर मुकुट गिरेगा। इसलिए श्रीमती राधिका को देख करके कटाक्ष से कृष्ण कांपने लगते हैं, अश्रु सात्विक विकार उनमें होता है, अश्रु कंप कंप यहां, तो वो मोर मुकुट भी मानो नाचता हुआ वो भी कांपने लगता है। और जब कृष्ण विमूर्छित होकर के गिर जाते हैं तो वो भी गिर जाता है, वो भी राधिका जी के चरणों में मोर मुकुट वो गिर जाता है। ऐसे राधिका जी की मैं कब पर चर्चा करूंगा, ये अपनी कथा ना। ये कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती जी, हम लोगों के संप्रदाय के वैभव स्तंभ है, वो कह रहे हैं इत्यादि सब बहु बातें इस चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन किया गया। ये कृष्ण की माधुरी को, ये चार प्रकार की माधुरियों को कैसे आस्वादन करती हैं ये। और अंत में कहा न पारे हम निर्बद्ध संजुजांग, कृष्ण कहते हैं कि मैं इसका ऋण नहीं चुका सकता। किसका? हे श्रीमती राधिके, हे गोपियों, तुम लोगों के इस पवित्र ऋण जो कि निरवध्य है, दाग रहित, बेदाग, परम निर्मल है, जिसको मैं ऋण नहीं चुका सकता। गृह की बेड़ियों को, श्रृंखलाओं को तुमने छेदन कर, गुर्जरों की श्रृंखलाओं को छेदन कर, आर्यपत को त्याग कर, जलांजलि दे करके, तिल और तुलसी लेकर के, गंगा जल लेकर के छोड़ दिया, जलांजलि देकर, और हमारे पास में आई। तुम लोगों का मिलन पवर परम पवित्र है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जरा कोई ठोठोली करके गोपी कहती है, जे क्यों नहीं दे सकते? अरे पुतना को तो दे दिया, कुब्जा को दे दिया, और सबको तो दे दिया, तो हमको भी ऋण से चुक जाइए। आपने की तो प्रतिज्ञा की है, जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजाम में हम, आप इसको पूरा कर दीजिए। कृष्ण कहते नहीं, मैं हार गया। क्यों हार गया? इसलिए कि तुम एकनिष्ठ हो, मैं बहुनिष्ठ हूं। एकनिष्ठ बहुनिष्ठ क्या? तुम लोगों की निष्ठा समस्त प्रकार से हमारे अंदर में, और हमारा कैसा, कैसी निष्ठा है? माता में है, पिता में है, भाई में है, बंधु में है, गुरुजन में है, गायों में है, वृंदावन में है, सत्यभामा रुक्मिणी कृपति भी है, और सब सखाओं में भी है, ललिता विशाखा इत्यादि लाखों कोटि गोपियों में भी है, तुम्हारे प्रति भी है। इनमें से एक को छोड़ दूंगा तो मैं उनका ऋणी बन जाऊंगा। इसलिए तुम्हारे जैसा तुमने सब कुछ छोड़ करके हमारे पास में आई है, हमारे प्रति तुम्हारी भावना है, ऐसा तो मैं कभी जीवन में कि कोटि कोटि देवताओं की आयु पाकर के भी मेरे लिए संभव नहीं है। और दूसरी बात तुम लोगों से कहूं, जे तुम कुछ मांग लो अपने सुख के लिए, तुम लोग कहे जी आपकी सेवा हमको मिल जाए, तो सेवा मिलने से तो, और मैं यदि सेवा देता हूं तो और ऋणी हो जाऊंगा। इसलिए नहीं नहीं नहीं, मैं कभी भी तुम्हारे ऋणी से मुक्त नहीं हूं। और इसी में आनंद मुझे है कि मैं तुम्हारा चिर जीवन का ऋणी बना रहूं, जन्म जन्मांतर में तुम्हारा ऋण शोधन की मैं चेष्टा करता रहूं। इसलिए तो महाप्रभु के रूप में ये पधारे और ऋण शोधन करने के लिए। तो ये है वेणु माधुरी, रूप माधुरी। वेणु माधुरी का वर्णन किया, आखन मतांग अभी बतलाया, धन्याश मूढ़ मतो अपि हरण्येता, ये सब वर्णन किया। कृष्ण का ऐसा सुंदर रूप, गऊ के पीछे पीछे जा रहे हैं लाखों कोटि गायें, सखाए लोग लाखे लाखों, और सब सखा लोग कर रहे हैं साधु साधु साधु। और कृष्ण का रूप कैसा है? बरहा पीड़म नटवर वपु, ऐसा सुंदर रूप, मनमथ मनमथ उनका रूप। जा रहे हैं एक वन से दूसरे वन में, आगे चल रहे हैं बलदेव जी, सिंगा बजाते हैं, अनुबेनुजुष्टम, और उसके पीछे में कौन चल रहे हैं? कन्हैया, कृष्ण कन्हैया जी चल रहे हैं, मदन मोहन, गोविंद जी चल रहे हैं, राधा दामोदर जी चल रहे हैं। कटाक्ष से सखाओं के तरफ में देखते हैं, कहते हैं नहीं उनके तरफ नहीं, किनके तरफ में? अनुबेनु जुष्टम, आगे बलदेव जी हैं और पीछे हैं कृष्ण, थोड़ा कुछ आगे चले गए बलदेव जी। इतने में श्रीमती जी से उनका मिलन हुआ, मिलन होने के बाद में अनुबेनु जुष्टम, कृष्ण जो बजा रहे थे उसको बजाया पीछे से किसने? श्रीमती जी ने अपने मुख में, फूंक दे रही हैं राधा जी, और हाथ किसके चल रहे हैं? कृष्ण के, अनुबेनु जुष्टम, और एक दूसरों के तरफ में कटाक्ष पात करते हुए जो देख रहे हैं, जिन्होंने इस रूप को दर्शन किया उन्हीं का जीवन एकमात्र सार्थक है, दूसरों का नहीं। नहीं तो आंखों की रखने की कोई भी सार्थकता नहीं। ये तो हुआ माधुरी आस्वादन। और तीसरा जो कारण है, ये बड़ा मुश्किल है, रूप स्वरूप दामोदर के अतिरिक्त तो कोई नहीं जानता। जानता है तो रूप स्वरूप दामोदर की कृपा से ही, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, और जितने हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अथवा तीनों गोस्वामी, श्यामानंद प्रभु राय, नरोत्तम ठाकुर और श्रीनिवास इत्यादि, ये जो जानते हैं उन्हीं की कृपा से। मूल कौन है? महाप्रभु जी कहते हैं कि जो जितना जानते हैं स्वरूप दामोदर राय रामानंद, मैं उतना नहीं जानता। यदि सुनना है मेरी कथा तो उनके पास में जाओ, वो सुनाएंगे, मैं उतना नहीं सुना सकता जितना वो लोग सुना सकते हैं। उसी का उन्होंने कुछ भय उन्होंने प्रकट किया, चैतन्य चेतामृत में यह विषय लिखूं कि नहीं लिखूं। फिर सोचा नीम के पेड़ पर केवल कौवे जाते हैं, नीम और आस्वादन करते हैं, और आम के पेड़ पर सुंदर मधु और उसकी मंजरियों के मधु को क्वेल आस्वादन करते हैं, कुहू कुहू करती है बड़े मधुर से, और निमौरी को आस्वादन करके कौवे क्या करते हैं, काँव काँव करते हैं, उसको कोई पसंद नहीं करता। तो ये आम के पेड़ पर बैठ करके आम की वो मंजरी, उसका मधु और सुंदर मधुर पका हुआ आम का रसास्वादन ये नहीं करेगा। तो जितने इस जगह ऊँट वाले ऊँट हैं अथवा कौवे हैं, इसको आस्वादन नहीं कर सकेंगे। अरे ये क्या अद्भुत बात, विश्वनाथ चक्रवर्ती को मारने के लिए दौड़े। यहाँ के सारे संप्रदाय गोस्वामी जितने थे उस समय में, वल्लभाचार्य, निम्बादित्य जी, निम्बाचार्य, निम्बार्काचार्य जी और उस समय में थे लोग यहाँ रूप गोस्वामी के, इन भावों को सुन करके उन पर कटाक्ष किया, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये रस की बातें कभी न सुना गया न अभी कुछ, और आप इसमें लिख रहे हैं। राधा जी कृष्ण की परकिया था, आपने लिख दिया, अरे ये तो बड़ी भारी समस्या हो गई। राधा जी तो परम पवित्र, उनको मत लाइए, रुक्मिणी जी को लाइए, राधा रुक्मिणी जी का भजन हो। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, इन्होंने परवाह नहीं किया। महाप्रभु के जो भाव थे, बिना पारकीय भाव का यह रस की पुष्टि नहीं होती संपूर्ण रूप से। ये हमारे चैतन्य महाप्रभु की, रूप गोस्वामी इत्यादि की ये प्रधान देन है, विशेष वैशिष्ट है और सब संप्रदायों से, जो यहीं पर बैठ करके इन चीजों को प्रकाश किया। दूसरे लोग समझ नहीं पाए बल्कि विरोधी बन गए, उसीलिए ये कह रहे हैं मैं लिखूं कि नहीं। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं है, ऊंट और कौवे और इस जाति के जो उल्लू जाति के रहेंगे लोग वो इनको नहीं समझ सकेंगे, और जो रसिक हैं जिनका पूर्व जन्म का इस जन्म का कुछ संस्कार है वो लोग समझेंगे, दूसरे नहीं समझेंगे। इसलिए निर्भय होकर के लिखना चाहिए। तब चैतन्य चरितामृत में ये सब चीज, राय रामानंद संवाद, रथ का संवाद, लक्ष्मी जी से राधा जी की श्रेष्ठता इत्यादि का विषय, राश इत्यादि का वहां पर लिया, इत्यादि का सब वर्णन किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं नहीं वर्णन किया, जी गोस्वामी ने संदर्भ में इसका विचार किया, रूप गोस्वामी ने भक्ति गोस्वामी सिंधु में, सनातन गोस्वामी ने इस सब का विचार का बीज दिया है बृहद भगवतामृत में। इन सब का बीज आया स्वरूप दामोदर से, और उनमें बीज कहां से आया, महाप्रभु से। तो यही सब का आस्वादन करना चाहते थे महाप्रभु जी, इसलिए अपने ब्रज के परिकरों के साथ में आए। कोई स्त्री, अधिकांश स्त्री वेश में, पुरुष वेश में, और कुछ लोग स्त्रियों के वेश में, बहुत कम यहां आकर के। पहले इसमें आज का विषय थोड़ा सा है रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु जी का। ये नित्यानंद प्रभु कौन है, संधिनी के मूल प्रतिष्ठा, संधिनी विषय, एक ही वस्तु तीन भाव, संबित, संधिनी, लादिनी, कृष्ण में ये तीन, ये तीनों को मिलकर के भगवत्ता। इसमें कृष्ण केवल चित्त के और राधा जी लादिनी के और बलदेव प्रभु जी संधिनी के मूल चीज है। ये आप तीनों मिलाकर के तब फिर एक हो गया कृष्ण, तीनों मिलकर के बदंति तत्व विदस तत्तम जज ज्ञानम अद्वयम इत्यादि, एक रूप में ये हैं। यही कृष्णचंद्र जी बलदेव को इस लीला में ले आए। बलदेव को किस लिए ले आए, महाप्रभु जी का तीन चार उद्देश्य था। जिस समय महाप्रभु जी आए उस समय में युग धर्म प्रचार करना था, युग धर्म नष्ट हो रहा था। युग धर्म क्या था, धर्म की संस्थापना, परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना, दुष्टों का दलन, संतों शिष्यों का प्रिय आचरण, भक्तानां विनोदाय करामि विविधम क्रिया इत्यादि। अब उसको चैतन्य चेतामृत में चार प्रकार से दिखलाया गया, धर्म की स्थापना अद्वैताचार्य प्रभु की प्रार्थना, अनर्पित चार प्रेम को देना, वितरण करना और राधा भाव आस्वादन करना। एक ही काम के द्वारा ये जो अभी बतलाया माधुरियों को चार प्रकार की आस्वादन करते समय राधा भाव को आस्वादन करने के लिए राधा जी का भाव और उनकी कांति को लेकर के गौ रूप में आए, मूल ये करने से बाकी चारों हो जाएंगे। नित्यानंद जी को लिया, नित्यानंद जी हैं बलदेव। बलदेव कौन? कृष्ण के प्रथम प्रकाश, पहले दोनों शरीर से एक, आत्मा से एक और शरीर से दो, वो श्याम वो गौ। अस्त्र का थोड़ा सा धारण का है, उनके हाथों में सिंगा, उनके हाथों में बंसी, उनको भी बंसी है, कुछ हल मुसल है द्वारका के लीला में, मथुरा के लीला में भी कुछ है, इसलिए थोड़ा सा अंतर है, किंतु उन्होंने भी राज किया, उन्होंने भी राज किया, दोनों का सब कुछ एक ही के समान है, यही उनका ये प्रकाश है। द्वारका और मथुरा में पहला काय व्यूह प्रथम, दूसरा काय व्यूह नारायण के पास में महासंकर्षण, और महासंकर्षण से हुए कर्णाब्दशाही विष्णु, कर्णाब्दशाही विष्णु से गर्भोदशाही, और गर्भोदशाही से अनंत क्षीरोदशाही, और एक रहते हैं शेष, पांच रूप में उनकी सेवा, असन बसन भूषण सब कुछ उन्होंने सेवा की। बलदेव प्रभु जी दस रस से सेवा करते हैं, किंतु सख्य प्रधान है, वात्सल्य भी उनमें है, तीन भाव तो किया, चतुर्थ रह गया माधुर्य। माधुर्य की पुष्टि करते हैं अपने इस बलदेव रूप से, जैसे कल मैंने बतलाया था राधा कुंड में होली के समय में और सब लीलाओं में गोचारण के समय में किसी से छिप करके प्रेम करना है एक बात, अब प्रकट में दोनों रहे तो उसमें अन्य बात, इसलिए प्रेम कुटिल होता है और छिप करके, ये भक्ति रसामृत सिंधु में बतलाया, बलदेव जी नहीं रहेंगे तो छिपेंगे कैसे, दुर्लभता कैसे होगी, इसलिए उसके लिए ये पुष्टि करते हैं। अब विशेष करके अंजनी अनंग मंजरी के रूप में साक्षात रूप में उनकी सेवा करते हैं प्रकाश, इस तरह से सभी रसों में ये सेवा करते हैं, इसलिए बलदेव जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए और अपने लीला को तब तक प्रकाश नहीं किया जब तक कि ये महाप्रभु जी से नवदीप लीला में नहीं मिले। इसलिए जितने भी परिकर हैं नित्यानंद प्रभु भी उनके प्रेम के आस्वादन में और राग मार्ग भक्ति के प्रचार में धर्म की स्थापन करने में शिष्टों को रक्षा करने के लिए और असुरों का दलन करने के लिए ये नित्यानंद प्रभु जी की भी भूमिका बहुत गंभीर है। नित्यानंद प्रभु जी एक चक्र में उत्पन्न प्रकट हुए, पहले हुए विश्व रूप के रूप में सची मैया के गर्भ से, और फिर इनके अंतर ध्यान हो जाने पर इनके नित्यानंद प्रभु के रूप में, और अपने को तब तक प्रकाश नहीं किया जब तक ये वृंदावन में आए। वृंदावन में समस्त मंदिरों में गए, कहीं भी कृष्ण को नहीं देखा, कहा जी हमारा कन्हैया कहाँ गया, आकाशवाणी हुई नवदीप में, देखा जैसे अभी तो प्रकाश नहीं हुआ, रह गए, अभी घूमने लगे, घूमते 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 जब महाप्रभु जी गया में आए और गया से लौट करके सुभाष आंगन में जब प्रेम प्रकाश करने लगे, संकीर्तन करने लगे, इसके बाद में तब वो पहुंचे, जब नंदन आचार्य के भवन में उनसे भेंट हुई, भेंट होने के बाद में दूसरों को देखा, इसके बाद में महाप्रभु जी को और प्रकाश करने के लिए व्यास पूजा हुई, जगाई मधाई का उद्धार किया, और भी नित्यानंद प्रभु जी ने ये सब काम किया। महाप्रभु जी ने सन्यास लिया किस लिए? अब तक तो नवदीप में थे, किंतु एक बात प्रसंग वस्ता ये कहना चाहूंगा, कुछ लोग थोड़े से समझने में फेर करते हैं, समझ नहीं पाए, जैसे ये वृंदावन है ना, द्वारका और मथुरा, रस वैचित्र के कारण द्वारका से मथुरा, मथुरा से वृंदावन, माधुर्य के माधुर्य लीला के कारण ये श्रेष्ठ परस्पर है। उसी प्रकार से नवदीप लीला है और जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी की लीला है और गोदावरी तट पर राय रामानंद के साथ में लीलाएं हैं। तीन प्रकार की लीला, एक बाल्यपन का, एक संन्यास से लेकर के जगन्नाथपुरी तक पहुंचने का, और एक वहां से लौट करके राय रामानंद जी से और सब घूम करके जगन्नाथपुर में गंभीरा में लीला स्पादन का। कुछ लोगों की धारणा ऐसी है नवदीप से जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी से भी श्रेष्ठ राय रामानंद जी का क्षेत्र गोदावरी तट पर, जहाँ पर कि ये सब लीलाएं हुई थी, श्रेष्ठ है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, जगन्नाथपुरी ही श्रेष्ठ है जहाँ पर कि ये सब लीलाएं प्रकाशित हुई और गंभीरा में महाप्रभु जी ने लीलास्वादन किया। किंतु चैतन्य चरितामृत और हमारे गोस्वामियों ग्रंथों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है नवदीप श्रेष्ठ है, गोदावरी से भी श्रेष्ठ जगन्नाथपुरी का क्षेत्र और उससे भी श्रेष्ठ है नवदीप लीला। क्यों? माधुर्य लीला जैसे ऐश्वर्य लीला है द्वारका में, उससे माधुर्य अधिक है मथुरा में, उसे भी माधुर्य है वृंदावन में। उसी तरह से क्षेत्रपुरी से अधिक माधुर्य